और वृंदावन में पूर्णतम है, द्वारकाधीश पूर्ण है। चैतन्य मत में भी जो अचिंत भेदा भेद देखा जाता है मध्य में, मध्य संप्रदाय में इसका इंगित मिलता है, इसलिए इस विषय में भी दोनों में ऐक्य है। इसी तरह से यहां पर उन्होंने मध्य के संप्रदाय के अंतर्गत माना है। हम लोग कल भक्ति विनोद ठाकुर जी का मीमांसा पत्र देखेंगे, उसमें जो जीव गोस्वामी का स्वकीय और परकीय का भाव, ये सब संप्रदायिक रहस्य हैं। इनके जानने से स्थिरता होती है भक्ति में, और नहीं तो उसका कोई।
दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांचन सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हा देवी का तू भर गद गद याद्य भाषा जाचे निपत्त भूवि दंडवत बुध भटारति अस्पता समबुदस्य जनस्य कृत्य गंधर्वी के तव गणी गणना अंग श्यामलिम छटा मंदे कृतेन्दे वरम जड्डंजा गुडरोचि संविदधतंग पट्टंबरश्च श्रिया बृंदारण्य निवासिनम हृदिल सद्दामाभिरामोद राधास्पंद निवेशितो जल ध्यायेन भक्त्या विहीनापराध चित्तार्थ कामादि तरंग मध्ये कृपामयी सां शरणं प्रपन्ना वंदे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तनाय कृष्णचैतन्याय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम।
जी गोस्वामी के तिरुभाव उत्सव के संदर्भ में हम लोग सखिया पर किया के संबंध में बतला रहे थे। जी गोस्वामी ने बारह कारण दिखला करके कृष्ण के साथ में गोपियों का स्वकीय संबंध हमने उसको साधारण रूप में बतलाया है। लौकिक रीति के अनुसार में उपपति बहुत ही गर्हित निंदनीय और स्वर्गकर इत्यादि है। नटलंग शास्त्रों में भी उपपति को घृणित बतलाया गया है। कृष्ण ने ही कहा है स्वयं कि कुलीन स्त्रियों के लिए उपपति जात पुरुषों की सेवा सब प्रकार से निंदनीय है, उनका लोक परलोक दोनों बिगड़ता है, जस लोक में अपजस होता है, यह कुकर्म तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है, वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है और नरक का द्वार है। परीक्षित जी ने कहा है कृष्ण तो आप्त काम है, किस लिए उन्होंने ऐसा निंदनीय कर्म किया, इसलिए यह निंदनीय कर्म है। यहाँ पर निंदनीय इसलिए कहा गया कृष्ण के संबंध में नहीं और दूसरों लोगों के लिए। कृष्ण के साथ में गोपियों का नित्य दाम्पत्य संबंध है, स्त्री पति का संबंध है ये बतलाया ब्रह्म संहिता ने आनंद चिन्हय रस प्रतिभाव इत्यादि में निज रूप तया कला भी, जैसे कृष्ण का रूप है और है उनकी ये कला शक्तियां हैं, शक्ति शक्तिमान अभेद हैं, इसलिए उनकी ही अपनी ही शक्ति है। शास्त्रों में भी ऐसा देखा जाता है अनेक जन्म सिद्धानां गोपीनां पतिरेववा, बहुत से जन्मों में सिद्ध गोपियां कृष्ण को अपना पति ही मानती है, पति ही विभाव है, वो तो विश्व ब्रह्मांड के पति हैं, उनके ये उनके पतियों के पति हैं, सबके हैं। गोपाल तापनी में भी कृष्ण को सौ ही स्वामी भवती, स्वामी पति के लिए तात्पर्य के लिए ही कहा गया है। लक्ष्मियां कभी भी पार्थिया नहीं है, ये लक्ष्मी की लक्ष्मी है, इनके लिए कैसे संभव है, इत्यादि बहुत सी बातें जीव गोस्वामी ने कहा। इसमें अंत में लिख दिया स्वेच्छा लिखितं किंचित किंचित अत्र परीक्षा, हमने कुछ अपनी इच्छा से लिखा है और कुछ दूसरों के अनुरोध करने पर लिखा है, जिसमें पूर्व पर संबंध है वो समझो जो हमने अपनी इच्छा से लिखा है, और जिसमें पूर्व और पर पीछे का कोई संबंध नहीं है उसको समझो कि हम दूसरों की इच्छा से लिखा है। क्या समझाइए पूर्वापर में?
पूर्व और पर दोनों में संगति है, और जीव गोस्वामी का अपना लिखा है, जहाँ संगति नहीं है और दूसरे की इच्छा से लिखा है,
अर्थात हमने कहीं पति लिखा है कहीं लिख दिया उपपति, असंगति नहीं रही, इसलिए ये मेरा विचार नहीं है। इसलिए जिसमें पूर्व और पीछे का और पहले का हमारे विचारों में जहां पर संगति देखना वो हमारा विचार मान करके ग्रहण करना, आज जिसमें संगति नहीं है उसको समझना दूसरों की इच्छा है। जीव मरता है, जीव कभी नहीं मरता है, ये दो बातें कही गई एक साथ में, इसमें संगति है ये संगति नहीं रही, इसलिए इसको दूसरों की इच्छा से समझना। तत्व के व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा, वो एक ही बात कहेगा जीव कभी नहीं मरता, वो कृष्ण का नित्य दास है, जन्म से अतीत है, वो सनातन है। देखो इसका सब पूर्वापर संबंध है। इस तरह से जीव गोस्वामी जहां पीछे और पहले का संबंध युक्त बातें कहते हैं वो तो ठीक है उनका लिखा हुआ, और दूसरों के अनुरोध से कौन, इसमें संगति आपको नहीं मिलेगी, इसलिए वो दूसरे की समझना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जीव गोस्वामी के रूपानुप, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जीव गोस्वामी जी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये रूपानुप वैष्णव में प्रधान हैं, उनके लिए कभी भी स्वकिया ये कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी ने सर्वत्र और सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ने सर्वत्र पर किया कहा है, इसलिए ये नहीं कह सकते, इसलिए इसको समझो ये दूसरों की इच्छा से कहीं लिख दिया है, वो दूसरों के तुष्टि के लिए, क्यों दूसरे कौन, अनाधिकारी, जो जो लोग वैधि भक्ति पालन करते हैं और जिनके दिमाग में नहीं आता ये कृष्ण सबके हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत विशेष गंभीर ये है, ये सबके लिए नहीं है, तभी मैं ये बतला रहा हूं, यदि किसी दिन ये काम आए ये सबके दिमाग की बात नहीं, ये समझ जाएंगे, तभी सुन लीजिए जब प्रसंग आ गया है। इसलिए जीव गोस्वामी ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जीव गोस्वामी को प्रणाम करके उनके विरुद्ध भी अस्त्र धारण कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जी, अर्जुन ने क्या किया जब महाभारत युद्ध होने पर आमने सामने युद्ध जब होने की नौबत आई, शंख बज चुका है अब लड़ाई होने वाली है, तो अर्जुन ने बाण चलाए पांच, पहले उन्होंने भीष्म पितामह के चरणों में बाण मारा, तो वो बाण उनके चरणों में नहीं लग करके फूल जैसा उनके पैरों पर गिरा, उनको खरोंच भी नहीं आई, उन्होंने कहा बस तेरी जीत हो, यदि तू हमको प्रणाम कर नहीं करता और युद्ध आरंभ कर देता जरूर तुम्हारी विजय नहीं होकर के पराजय होती। चूंकि हमको तुमने आशीर्वाद मांगा है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम करो। दूसरा बाण मारा द्रोणाचार्य जी को, वो भी फूल के समान उनके चरणों में गिरा। उन्होंने कहा तेरी जय हो, मैं अंतर से तुम्हारी विजय की कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ इस युद्ध में, किंतु यदि हमको नहीं किया होता तो क्या होगा, होता तो जरूर इसमें हारता, अब तुम्हारी कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी, अब तेरी जय हो। तीसरा चलाया कृपाचार्य जी को, द्रोणाचार्य जी के साले, वो भी उनके गुरु हैं, शिक्षा गुरु, वो भी उनकी मृत्यु नहीं है, वो अजर अमर हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जब तुमने हमको प्रणाम किया बस तेरी अब जय, नहीं तो तुम्हारी जय नहीं होती। तुम भले ही उन दोनों को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेते तभी नहीं होता, हमारे आशीर्वाद के बिना नहीं। ये तीन ही और तीनों को प्रणाम किया। तो वैसे ही एक बहुत ही निष्ठुर सत्य की बात उद्घाटन करना है, प्रकाशित करना है, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया उनको और कहा जैसे आपका उच्छिष्ट, वैष्णव का उच्छिष्ट, आप वैष्णव हैं, आपके उच्छिष्ट को मैं ग्रहण करता हुआ आप ही के सिद्धांत का मैं प्रतिपादन करता हूं, हमारा कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं, लोगों के कल्याण के लिए और आप ही का मत प्रचार करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। उन्होंने कहा जैसे जीव गोस्वामी कभी भी स्वकिया के पक्ष में नहीं दे सकते हैं अपनी राय, उन्होंने जो व्याख्या की है स्वयं की इच्छा से नहीं अपितु तो दूसरों की इच्छा से ही ऐसी व्याख्या की है, इसलिए उन्होंने अपनी व्याख्या के उपसंहार में स्वयं ही इस चीज को स्वीकार किया है जो मैंने कुछ दूसरों की इच्छा से अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा क्या है, जो रूप गोस्वामी की इच्छा है वही अपनी इच्छा है और सनातन गोस्वामी की, और दूसरों की इच्छा क्या है स्वकीय का मैंने प्रतिपादन किया है लौकिक दृष्टि से, अनाधिकारी आदमी उसमें प्रवेश न करे इसलिए। फलस्वरूप महाप्रभु के चरणाश्रित अंतरंग भक्तों के लिए ऐसी व्याख्या कदापि ग्राह्य नहीं हो सकती है। स्वकीय आप जैसी वाली महाप्रभु के चरणाश्रित जितने हैं उनके लिए ग्राह्य नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी व्याख्या आगे और पीछे के इधर उधर के प्रसंगों से सिद्ध नहीं होती है। अब यहां से उन्होंने देना आरंभ किया, पहले इसको देख लेंगे हम लोग संक्षेप में, और तब फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या मीमांसा किया, वो तो जज है ना, बहुत बड़े भारी जज है, पारमार्थिक विषय में उनके समान कोई जज नहीं है। यहीं कहीं भी किसी भी विषय के लिए परस्पर मतभेद देखा जाए, चित्त अस्थिर होता है, क्या सिद्धांत इस विषय में होना चाहिए, इस विषय यही मन में आए ना तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास में चले जाओ हाथ जोड़ करके, बस वो मीमांसा कर देंगे। सबसे पहले उनकी व्याख्या देखना जैव धर्म में, उसमें देखना ये ब्रह्म संहिता की टीका देखना, भागवत की एक टीका भी लिखी थी उन्होंने, वो आजकल उपलब्ध नहीं, और जो ग्रंथ हैं उनके हैं, गीता की भी उन्होंने गीता का अनुवाद किया है, और भी उन्होंने गोसाइयों के बाद में इतने ग्रंथों का प्रकाशन दूसरों ने नहीं किया। तो ये सब चीजें हैं, उनके यहाँ जाइए और दरवाजा खटखटाइए, भक्ति विनोद ठाकुर जी कृपा करने के लिए बरहस्त लिए ऐसे खड़े आ जाओ, तुम्हारी समस्त शंकाओं का मैं निराकरण कर दूंगा। जब देवता लोग आते हैं तो तुम लोगों की तो बात क्या, देवलोक में भी चले गए, उनके संदेहों को दूर किया, इसलिए परमार्थिक विषय में कोई भी संदेह हो तो उनके पास में संकोच चले जाओ, वो आदर करके बैठा करके बड़े प्रेम के साथ में समझा देंगे, थोड़े ही शब्दों में अद्भुत उनके पास में कला है समझाने की ना? अब देखिए कैसे ये कारण, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का हम पीछे करेंगे, पहले इनके संबंध में संक्षेप में बतलाएंगे तब। उपत्ति का भाव और धर्म स्पर्शी और नरक जनक है, यह बात ठीक है। यह केवल प्राकृत नायिकाओं के लिए ही है, कृष्ण के लिए ये सब चीजें नहीं है। जब ईश्वरों के लिए ही नहीं है तब तो फिर भगवान कृष्ण के लिए, जो ईश्वरों के ईश्वर हैं उनके लिए क्या धर्म अधर्म है? कृष्ण कभी भी अधर्म नहीं करते। जो करते हैं, गोपियों का कपड़ा ले लिया, नंगी उनको देखा तो द्रौपदी का देखा कि नहीं कपड़े होकर के, उनका बाकी क्या रहा? और कृष्ण से कोई चीज छिपी है अंदर बाहर की? मट्टी क्या उनसे छिपेगी? अंतर की आत्मा जो है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो भी देखते हैं सब समय। तो ये बाहर का शरीर, जैसे पिता माता लड़की का शरीर नहीं देखते हैं जन्म से ही, उसको धोते नहीं है, तो कृष्ण के लिए क्या बात है? वो तो समस्त प्रभुओं के भी प्रभु, ईश्वर के भी ईश्वर ये हैं। उनके लिए ये सब नहीं है। किसी भाव से कृष्ण का भजन करने से सदगति होती है। यदि कंस शत्रु के रूप में उनका भजन किया, उनका विरोधाचरण किया, उतना उनको मारने के लिए गई, कृष्ण ने क्या किया? उसको मुक्ति दे करके मुक्ति से भी ऊपर की गति दे दी। कोई भय से उनका भजन किया, कोई कुछ किया, कृष्ण के प्रति लागू होने से ही बस उसका कल्याण है। शत्रु भाव से होगा, आप कोई स्तुति के सहित में उनके पास में पति पत्नी के रूप में जाने के लिए सोचे तो उसकी गति नहीं होगी, जरूर होगी। जिनके भू संचालन मात्र से अगणित विश्व ब्रह्मांडों की सृष्टि और ध्वंस प्रलय हो जाता है, भू चलन संचालन भ्रूभंगी से ही सब कुछ हो जाता है ना? ऐसे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और उनकी महाशक्तियों में भी सब प्रधान जो लादिनी शक्ति राधिका जी हैं या गोपियां हैं, गोपियों में कोई दोष स्पर्श कर सकता है? इसलिए रूप गोस्वामी ने नाटक चंद्रिका में लिखा है, प्रौढ़ा औपपत्य को पंडित ने जो गुण बतलाया है वो अपराकृत कृष्ण और गोपियों को छोड़कर दूसरे नायिका नायक। इस संसार में अपने पति के रहते हुए भी कोई स्त्री यदि उपपति से प्रीति करती है वो निंदनीय है, किंतु पर जगत में दूसरा कोई है ही नहीं पुरुष, एक ही मात्र पुरुष कौन है? नहीं पुरुष है, तो वहां पर अपनी स्वकीयता से जिस रूप में वो व्यवहार करें और जैसा हम इस जगत में देखते हैं ऐसा वहां पर कोई भाव ही नहीं है। ये तो लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए ऐसा कहते हैं। बल्कि यह गोपियों के लिए औपपत्य दूषण न होकर के भूषण स्वरूप है। कृष्ण की प्रकट लीला मायकी नहीं है। जीव गोस्वामी ने बताया माया प्रत्ययित भाव है। इन्होंने कहा उन लोगों को थोड़ा सा इधर में न आए इसलिए उन लोगों के लिए ऐसा कहा जी गोस्वामी ने, कृष्ण संदर्भ में और सब संदर्भों में, प्रति संदर्भ में ये स्पष्ट रूप से कहा है कृष्ण की माई की प्रकट लीला भी मायकी नहीं है। जी गोस्वामी ने स्वयं कहा है वस्तुतः प्रकट लीला में कोई भी भेद नहीं है, उस प्रकट लीला में और अप्रकट लीला में। यहां पर जो कुछ प्रकट में लीला होती है वहां पर वही रहती है। ब्रह्म संहिता श्लोक में श्रील जोग गोस्वामी मंतव्य द्रष्टव्य अनुसरणीय है। ब्रह्म संहिता की टीका में उन्होंने ये 5:47 श्लोक में, जिसको अभी हम लोग इसके बाद ही में उसको हम लोग लेंगे, उसी में भक्त विनोद ठाकुर जी ने अपनी व्याख्या की, मीमांसा दी है। जब कृष्ण जीवों पर अनुग्रह करके अपनी लीला माधुर्य इस प्रपंच में जगत में, प्रपंच किसको कहते हैं? प्रपंच माने क्या?
प्रपंच जागतिक,
आप बतलाइए
जागतिक जिसे बोलते
हैं। प्रपंच किसको कहते हैं?
जिन्हें पांच भौतिक से बना हुआ जगत
है। प्रपंच पांच हो कौन क्षति जल पावो, इनके द्वारा रचित जो विश्व है और इस पर जो आसक्ति है इसको कहते हैं प्रपंच। प्रपंच माने झूठा भी होता है किंतु यही झूठा है इसलिए कहते हैं प्रपंच सत्य नहीं है किंतु दिखता है सत्य जैसा। इसलिए इसको सत्य मानते हैं, किंतु ये सत्य नहीं है। ये हमारा शरीर और विश्व जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसमें कोई भी चीज सत्य नहीं है। सत्य माने तात्कालिक सत्य है। विशेष करके जो रिलेशन जो देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, पिता माता भाई बंधु सखा इत्यादि का, सास ससुर बहनोई और ये सब का जो जितना भी रिलेशन है, ये क्या है? यही प्रपंच है, जगत प्रपंच नहीं है। ये भंगी हमारी जो देखने की है, एंगल ऑफ जो विजन है, ये गलत है ना? ये प्रपंच है, झूठा है, जगत झूठा नहीं है। ये सभी भगवान के सेवा के उपकरण है, ये सब चीजें, सब कुछ भगवान की सेवा। उस पर जो हम संबंध स्थापित करके हम जो देखते हैं, ये दृष्टि भंगी जो है, ये क्या है? ये प्रपंच है। जो लीला वही लीला, नित्य लीला जो अप्रकट लीला में होती है। अप्रकट लीला कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन कहाँ? ये क्या है? भौम वृंदावन है। ये इस जगत में वही आविर्भूत हुआ है, किंतु इसको भी मत समझो जो झूठा है। ये भी नित्य सत्य है, किंतु हम इसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों? दृष्टि के भंगी से। दृष्टि मैंने क्या?
देखने वाला।
हम कृष्ण भी आकर के खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे कृष्ण तो दिखते नहीं है, ये दिख रहे हैं, ये कौन है? ये कोई जाली आदमी है, ये कोई बच्चा है, और कृष्ण जैसा सजा दिया गया है, ये कृष्ण ऐसा कर करके सबको ठगना चाहता है। विचार करेंगे, देखेंगे ये सोता है कि नहीं, खाता है कि नहीं, और काम करता है कि नहीं, तो भी हमारी समझ में नहीं। ब्रह्मा जी नहीं समझे तो हम क्या समझेंगे? इसलिए इस जगत में आने पर उस लीला को जिस दृष्टि भंगी से देखते हैं, वो उसमें कुछ माया का दोष होता है। लीला तो ठीक है, कृष्ण जी जो है वही है। कंस के दरबार में जब आए सभा में, विभिन्न लोगों ने विभिन्न रूप से देखा। ये देखना लोगों का दोष है, कृष्ण तो जैसे के तैसे हैं। दूसरी ओर वह लीला प्रापंचिक स्थित जीवों के नेत्रों से अंतरहित हो जाते हैं, उसे अप्रकट लीला कहते हैं। जब लीला प्रकट होती है इस जगत में, इसको प्रकट लीला, और जब लीला वो अंतरहित हो जाती है, आंखों से ओझल हो जाती है, तो उसको कहते हैं अप्रकट लीला। किंतु कभी भी नहीं होती, ऐसा कभी होता नहीं है। अभी भी लीलाएं यहां हो रही हैं, अभी भी वो सब लीला कृष्ण की जैसे की तैसी चल रही है। हम देखते क्यों नहीं है? योग माया का संपर्क जो उस जगत से, इस जगत से और लीला का था, वो थोड़ा सा कट ऑफ कर दिया, स्विच ऑन हो ऑफ हो गया, इसलिए नहीं देखते। है लीला वही, यदि वो स्विच अभी भी कनेक्शन को जोड़ देना तो हो जाएगा। वो कौन जोड़ता है? कभी कभी व्यक्तिगत रूप से गुरु जोड़ सकते हैं। यदि गुरु उस कोटि के हों, गुरु भी बहुत कोटि के हैं, सब गुरु एक समान नहीं है। नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, रामानुज, मध्व और अभी हम लोगों के गुरु सब साधारण में जो गुरु होते हैं, सब गुरु एक नहीं है। कोई सिद्ध है, कोई असिद्ध है, कोई सिद्धि के निकट पहुंचे हैं, कोई अनर्थ युक्त भी हैं, जो कुछ नहीं जानते भी, ऐसे भी आजकल गुरु हैं। तो ऐसे गुरु से भी नहीं होता। अंततः उत्तम अधिकार के निकट के होने वाला जो है, वो गुरु यथार्थ में चाहे तो वो कनेक्शन जोड़ते हैं, तब उस लीला को अभी भी इस समय भी हुआ देखे। कैसे देख लेगा? जैसे कृष्ण ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने समय में जब वो आए, जोग माया को कह दिया, जोग माया ने संबंध 125 वर्ष के लिए, उस समय जगत में जो जो थे अपनी अपनी भावना के अनुसार में उस लीला का दर्शन किया, इसलिए उसको प्रकट लीला कहा। अब लीला वही है, किंतु कनेक्शन अब नहीं है, जोग माया ने हटा दिया। अब कोई महापुरुष ऐसे बिरले हों, जो ऐसे भजन सिद्ध हों, वो चाहें तो एक जीव का व्यक्तिगत रूप से कृष्ण की लीला से संबंध जोड़ करके उसको दिखला दे। सामूहिक रूप में वो कोई जीव नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो कृष्ण कर सकते हैं। ही हैज राइट रिजर्व फॉर दिस, और दूसरा नहीं कर सकता, कोई भी जीव नहीं करेगा, वो कृष्ण के लिए ही संभव है जिनकी वो शक्ति है। आप लोगों ने समझा लिया प्रकट लीला किसको कहते हैं, प्रकट लीला किसको कहते हैं। अच्छा, रूप गोस्वामी ने लघु भगवतामृत एक पहले के पहले खंड के 244 श्लोक में कहते हैं, अनादिमेव जन्म लीला जन्म आदि लीला में तथा अद्भुतम हेतुना किनचित कृष्ण प्रादुर्कुज्यात् कदाचन, अर्थात कृष्ण अजन्मा है, अजन्मा होने पर भी उनकी लीलाएं जो जन्म इत्यादि देखता है ना, अजन्मा का जन्म ये बड़ी अद्भुत चीज है, जिसका जन्म नहीं है उसका भी जन्म दिखता है, जिनका कोई मरण नहीं है उसका भी अप्रकट दिखता है, जो कभी भी सब समय आत्माराम और आत्माराम है आत्मकाम है, उनको भी रोते हुए बिलबिलाते हुए भय खाते हुए डर से डरे हुए इत्यादि दिखता है, और उनकी कामना नहीं पूर्ति होती तो द्वारका में जाकर के 16,108 रानियों से शादी करते हैं, और इधर कहते हैं कि वह जन्मा है अगोचर है ऐसा है, जन्म नहीं है किंतु यशोदा के नित्य पुत्र हैं, ये अद्भुत बातें हैं। किसी कारण से वो कृष्ण उन अद्भुत लीलाओं को नित्य जगत से गोलोक वृंदावन से इस जगत में जब अवतरित करते हैं प्रपंचित करते हैं, प्रपंचित माने क्या, प्रपंच में लाते हैं तो उसको कहते हैं प्रपंचित करना, तो उसको जगत में प्रकट लीला का, नहीं तो वो वहां अभी भी कृष्ण का सब जितने लीलाएं हैं वहां चल रही है, न किसी जगत में वो चल रही है। अप्रकट लीला नित्य दाम्पत्यमयी है, और प्रकट लीला माइकी और परोढ़ा उत्पत्ति भावमयी है, ऐसा समझना युक्ति संगत नहीं है। जैसा कि जी गोस्वामी ने अनाधिकारी लोगों के लिए ऐसा बतलाया, ये अप्रकट लीला वहां पर उस जगत में नित्य दाम्पत्यमयी, दाम्पत्य किसको कहते हैं, दंपति, दंपति किसको कहते हैं, स्त्री पुरुष को के जोड़े को दंपति कहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ रहे ना तो क्या कहेंगे, दाम्पत्य सूत्र में बंध गए आज, माने क्या, सूत्र क्या है, दाम्पत्य, दाम्पत्य माने क्या, दंपति, पति और पत्नी का मिलित होना ही एक दूसरे से संबंध युक्त होना दाम्पत्य सूत्र है, उस जगत में है, इस जगत में दाम्पत्य में है, और प्रकट लीला में माई की परोढ़ा उपपति भावमयी है, माई माई और परोढ़ा उपपति भावमयी है, माने माइक है और माइक दृष्टि से ये उपपति भावमयी है किंतु यथार्थ में नहीं है, माया के द्वारा जोग माया के द्वारा ऐसा दिखलाया गया है, जोग माया ने देखा अरे कृष्ण के गोपियों के अब संबंध होने वाले हैं, और जिस चीज को इस जगत में वो लीला को प्रकट करना चाहते हैं वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इनका विवाह नहीं होना देना ही हमारा पहला कर्तव्य है, कृष्ण की इच्छा नहीं है जिनका विवाह हो जाए, बस जोग माया ने कहलाया कि कृष्ण के साथ में विवाह होना ठीक नहीं है, जोग नहीं बनता, एक वो क्या कहते हैं मंगली है मंगला है, एक मंगली नहीं है, मंगला मंगली दोनों होना चाहिए नहीं तो शादी नहीं होगी, मंगल नहीं होगा, और भी इसका चंद्र और राहु एक दिशा में नहीं है, इसलिए इनकी शादी होने से गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं तो एकदम सब ठीक हो गया था, कपड़े अलंकार भी सब खरीद करके रख दिए गए थे जो कृष्ण के साथ में समस्त गोपियों की शादी, किंतु जोगमाया ने ऐन वक्त पर गड़बड़ कर दिया, उन्होंने कह दिया कि ऐसी शादी नहीं होगी। इसका तो जोग बनता है अभिमन्यु के साथ में, इसका बनता है चंद्रावली का, बनता है गोवर्धन के साथ में, मल्ल के साथ में, उसका उसके साथ में सुबल के साथ में बनता है, किसी का कुछ बनता है। इस तरह से सबको ठीक करा करके और बीच में ला दिया उनको गरगरी ऋषि को और लेकर के साथ। दूसरी बात, दूसरा कारण विशेष था, यदि ये शादी हो गई तो कृष्ण मथुरा में कभी नहीं लौट सकेंगे, असुरों का संहार जो होगा ये नहीं हो सकता। असुरों का संहार नहीं होगा, कंस का संहार नहीं होगा, धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी और द्वारका की लीलाएं नहीं होंगी, तो ये सब काम हो जाए। अरे ये काम तो वहां पर गोलोक बैकुंठ वृंदावन में भी कर लेंगे, क्या काम राज और ये सब, किंतु ये काम इस जगत में ये नहीं करेंगे तो सब धरा कर हजार दूसरा से किसी से होगा, इसलिए ऐसा करेंगे। जो मैंने बस चुटकी बजाते ही सब की और सब कर दिया, मती गोपियां बहुत दुखी हो गई, उनके माता पिता भी दुखी हो गए, किंतु फिर भी कोई उपाय नहीं, बस शादी करा दिया जोग माया ने। ये जो जोग माया ने शादी कराया किसके साथ में? गोपियों के साथ में नहीं, बड़ी चलाकी की उन्होंने, एक एक गोपियों की प्रतिमूर्ति अलग से बना दी और बना करके और उन गोपियों को उस समय वहां से हटा दिया, वो समय कृष्ण से मिलने में लगा दिया, जो नित्य सिद्धा थी वो कृष्ण से मिल गई हैं, और बाकी लोगों जो थे उनकी मूर्ति बना दी, जो माइक पंच भाव थी उनसे उनकी उन लोगों की शादी करा दी, शादी करा दी। किंतु उनमें अभी अभिमान ऐसा भरा, प्रत्येक गोपियां समझे कि हमारे वो पति हैं किंतु इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो कृष्ण से ही प्यार करते हैं। और उन मूर्तियों को विवाह के बाद में कभी हटा दिया, कभी प्रकट कर दिया अपनी लीला के अनुसार, कहे ये कैसे संभव है, कृष्ण के लिए क्या असंभव है, अघटन घटन शक्ति, जो नहीं होगा उसको भी करा देंगे, जो होगा रहने वाला है उसको भी, अन्यथा अन्यथा का क्या कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ कृष्ण, उनके लिए कोई भी बात नहीं है। पांडवों को लक्षागृह में बहुत काम है ना। हाँ क्या बतला रहा था, वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कोटि जगतों को एक साथ में भूखंड में नष्ट कर देंगे और कोटि कोटि जगतों का, हाँ उनको कौन रक्षा किया, वो तो मर चुके थे, उनके यहाँ पांच लड़कों को और एक मैया को झिलनी वहां पर पहुंचा दिया, वो मर गई और उनको दूसरे रास्ते से निकाल दिया।
ये माइक से रील,
ये देखो हैं, ऐसे युग में क्या नहीं कर सकती हैं। इसलिए कहते हैं राजपंचाध्याय से देखो, इसलिए चूड़ामणि सर्वलीला चौनरी राजलीला के आदि मध्य और अंत सर्वत्र ही प्रौढ़ापति का भाव विराजमान है, वो पहला श्लोक है राजपंचाध्याय का, भगवान तारात्री सर्वोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया। कितना सुंदर उसने लिया, कृष्ण ने उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए योग माया का आश्रय लेकर के और झट मुक्ति दी, भगवान होने पर भी भगवान अति बतलाया। रंतुम मनश्चक्रे किससे, कृष्ण का वृंदावन में विवाह हुआ कि नहीं, वृंदावन में कोई प्रमाण है, प्रमाण ये है जो नहीं हुआ, यज्ञोपवीत के पहले हिंदुओं में शादी नहीं होती, तो कृष्ण का यज्ञोपवीत कहाँ हुआ, मथुरा में, गर्गाचार्य जी ने किया, तो यज्ञोपवीत पीछे हुआ, जने और पहले ही शादी हो जाएगी, इसलिए वृंदावन में कृष्ण की शादी नहीं, इसलिए दाम्पत्य का कोई प्रश्न ही नहीं आता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये पहली दलील है, ऐसे सुंदर। इसलिए रासलीला के ये आदि बतलाया और मध्य में बतलाया। मध्य में क्या बतलाया? रास पंचाध्याय के 31वें अध्याय में पति सुतान्वय भ्रातृ ब्रह्मवान अति विलंघते अंत अच्युता गता गतिस्तवोद गीत मोहिता कितव जोषितो कश्चित्। पति सुतान्वय भ्रातृ ब्रह्मवान अति विलंघ, इनको विलंघ कर दिया मैंने, लांग गई। किसको? पति पुत्र भाई बंधु सास ससुर माता पिता को छोड़कर के कृष्ण से मिल गई। ये हुआ मध्य। और अंत में बतलाया कि कह रहे हैं कृष्ण, वो भी बीच में और भी बतलाया, हम अपने पतियों को छोड़कर के आपके पास में आई हैं, अब आपसे अभी गुरु कौन हमारा जगत में है जो अपने पतियों के पास में जाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए आप हम लोगों के गुरु हैं। किंतु पति सेवा के पहले पहले जो ऐसे गुरु उपदेश देते हैं, ऐसे गुरु जी की सेवा पहले कर लेने दीजिए, नहीं तो आपको अधर्म लगेगा, है ना। तो ये गोपियां ये क्या कह रही, यहाँ पर भी ऐसे ही और भी हजारों श्लोक है, यत्ते सुजात शरणम बरुहम इत्यादि श्लोक में बहुत जगह है। इसलिए रासलीला में पंचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत का सार हृदय है, उसमें आदि मध्य और अंत सर्वत्र ही इसी भाव का ही पोषण है। इसमें स्वकिया किसको कहते हैं? विवाह विधि से जो बंधन परस्पर होता है, पति पत्नी बनते हैं, उसको कहते हैं स्वकिया। और परोढ़ा किसको कहते हैं? विवाह विधि नहीं हुई किंतु प्रेम के आकर्षण से एक दूसरे से मिलते हैं, इसको परकिया या प्रौढ़ा कहते हैं। वहां पर प्रेम प्रबल होता है। यहां पर कृष्ण के संबंध में ये चीजें शास्त्रों के और लोक से भी अतीत है। ताबाज्यमाना पति भी देखिए, उनके पतियों ने मना किया, ये आदि अंत मध्य में दिखला रहे हैं। पतियों के मना करने पर भी वो जैसे तैसे कृष्ण के पास में चली गई। भ्रातर पतयश्च, भाइयों को और पतियों की जो सेवा कर रही थी छोड़ करके चल पड़ी। एवं जतपत्य पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग, इसमें भी अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण के पास में जाने का उल्लेख। सद्गुणानी व गायन तो नात्मा गारानी सत्स्मरो, अपने शरीर को ही नहीं स्मरण कर सकी, अपने भाई बंधु पति किसी को भी स्मरण नहीं कर सकी। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान एवं मदत्तो हित लोक वेद स्वानंग, यहाँ पर भी स्वानंग माने अपने जो कहे जाने वाले हैं सबको छोड़ करके। इस तरह से मन्यमाना स्वपार्थ स्थान स्वान दारान पर जौ कथ, कृष्ण के पास में ये गोपियां चली गई और उनके पति उन्हें देखा कि हमारी स्त्रियां हमारे घर में हमारे पास ही हैं। कैसे देखा? जोग माया के प्रभाव, जोग माया ने वैसे ही एक दूसरी उनका रूप बना करके वहां पर उनके पतियों के पास में रख दी और वो चली गई। कौन चली गई? नित्य सिद्धा जो कृष्ण की रागिनी शक्ति है वो सब ऐसे ही चली गई। और जो अभी साधन सिद्धा थी, अभी कुछ उसमें नित्य सिद्धाओं का की कृपा नहीं हुई थी, वो लोग उनके पतियों ने उनको रोक लिया। फिर वो भी कृष्ण से मिल करके और अपना कषाय दूर करके वो भी कृष्ण के साथ में सम्मिलित हो गई। इसलिए यहां पर स्पष्ट रूप से ये सब सिद्ध है। रासलीला माया के द्वारा रचित मिथ्या है भाई, ये ठीक नहीं विचार, समझ रहे हैं? रासलीला माया के द्वारा रचित और मिथ्या है। लक्ष्मियों की अपेक्षा गोपियों का उत्कर्ष कैसे प्रमाणित होगा? लक्ष्मी से द्वारका वाली अपनी पत्नियों से गोपियां श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक गोपी जो गोपी में सबसे कनिष्ठा है वो भी इन लक्ष्मियों से, बैकुंठ की लक्ष्मी, द्वारका की लक्ष्मी, अयोध्या की लक्ष्मी, इन सब लक्ष्मियों से वो श्रेष्ठ हैं। क्यों? रासलीला की वजह से। रासलीला को माइनस कर दिया जाए तो कृष्ण भी अवतार हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में जो लिखा गया योग माया समास उपासित, तो ये योग माया का महत्व क्या रहा, गोपियों की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होगी, इसी वजह से ये अपने पतियों को भी तुच्छ करके अपने शरीर को और संसारिक जितने भी चीजें हैं सबको छोड़ करके एकदम किसी की परवाह नहीं की, अपरवाह करके नहीं परवाह करके कृष्ण से मिली। हम लोग अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, समाज के बंधनों से अभी हम लोग निकल नहीं सकते, समाज जैसा कहता है लुक छिप करके थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, वृद्ध नहीं कर सकते, और वो सबको मिनटों में छोड़ करके एकदम चली गई, उनको पता नहीं ये कब छोड़ा। अभी हम मान लिया कि हम चाहते हैं कि भगवान का भजन संपूर्ण रूप से करें, कर सकते हैं, लड़कियां विशेष करके कर सकती हैं, स्त्रियां कर सकती हैं, घर में कहें जैसे हम आपको पति नहीं मानते हैं कृष्ण को पति मानती हैं, देखते एक दिन में घर से बाहर कर देंगे, कहो तो जो कृष्ण ही परम पति हमारे हैं, हम जानते हैं किंतु कह देंगे, जैसे तुम्हारे पति से कोई संबंध नहीं है उनको कह दो जो नकार दो, ऐसा कह सकते हैं नहीं, कह संसार की व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नहीं कहा जा सकता, इसी पर समाज टिका हुआ है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप लोग अपने पति के घर में रह करके विवाह शादी कर करके वहां पर उचित रूप में व्यवस्था हो करके तब भगवान का भजन करें, समाज को छोड़ करके नहीं। जब समय आएगा सुखदेव गोस्वामी जैसा तो क्या होगा, ऐसे उपदेशों को पैरों के तले रौंद करके वो लोग चले जाए, उनके लिए उपदेश की जरूरत नहीं, किंतु जब तक अधिकार नहीं आता है तब तक कोई ऊपर उठने के चेष्टा करेगा तो माया उसको पकड़ करके कुचल देगी। नायं सियो अंग उतान सरसे प्रसाद, श्रीमद् भागवत में ये जो कहा गया न अयं सियो उ अंग नितान सरसे प्रसाद, कृष्ण का वह प्रसाद लक्ष्मी जी को नहीं मिला, द्वारकावासियों की कृष्ण की पत्नियों को नहीं मिला, जो गोपियों को मिला, कृष्ण उनके गले में कंठहार के समान झूल गए, पढ़ने की भीख मांगने लगे, ये और कहीं संभव नहीं है, लक्ष्मी जी के लिए संभव बात नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जो है श्रेष्ठ है गोपियां, ये चीज लीला नहीं भी होती तो कैसे होता, इसी लीला के लिए वो श्रेष्ठ है। रामचंद्र जी ने राष्ट्र किया ना जनकपुरी में, वो लोग आजकल कहते हैं ये कृष्ण भी राष्ट्र किया,
रामचंद्र
जी शुकर भगवान ने किया ना, नहीं कर सकते किसी भी अवतार में नहीं कर सकते, रामचंद्र जी सिंह लीला में ये सब चीज नहीं होगा, कृष्ण लीला में स्पेशल रूप में जीवों को यह अधिकार दिया। द्वारकाधीश भी नहीं लीला कर सकते, 16,108 रानियां थी ना, ले जाते समुद्र में और कहते जे यहीं पर राष्ट्र होगा, उसके किनारे तो हो जाएगा नहीं होगा, कोई स्त्रियां राजी नहीं होंगी, कहे तुम्हारा ये खराब है आदत, कृष्ण को कह देंगे हम नहीं जाएंगे, सत्यभामा जी अड़ जाएंगी, रुक्मिणी जी अड़ जाएंगी, कहे हम तुम्हारे राष्ट्र में नहीं जाएंगे, नहीं होगा उनके लिए संभव नहीं, ये गोपियों के लिए ही संभव है। न पारे हम निर्वध्य संयुजान ससाधु कृत्यम, आपने हमारे प्रति जो अत्यंत निर्मल पवित्र जो अनुराग किया है, प्रेम किया है, ये सब प्रकार से निर्मल है, जगत में इसका स्थान ही नहीं है, कोई दूसरा उदाहरण और समता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों का ऋणी हूं। कौन कहता है, कृष्ण कहते हैं, किसके लिए, द्वारकावासियों के लिए तो नहीं कहा, जो सुधा मैया के लिए भी नहीं कहा, नंद बाबा के लिए भी नहीं कहा, किसी सखा के लिए नहीं कहा, ये किसके लिए कहा, केवल मात्र गोपियों के लिए कहा, मैं तुम लोगों का ऋणी हूं, देवताओं जैसे आयु पात्र के लंबी भी तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता, क्यों, तुमने अपना कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, सर्वस्व हमको तुमने दे दिया, मैं तुमको अपना ऐसा नहीं दे सकता, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, किंतु तुम सबको छोड़ करके हमारे पास में आई है, श्लोका माँ फटे में दूर जा रेह सिंह खला संपृक्त तत्वा प्रतिदास साधना। इसमें जो पद्यांश परोढ़ा उत्पत्ति का भाव प्रतिपादक है, माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला। दुर्जर गृह श्रृंखला माने क्या? घर की कठिन बेड़ियों को तोड़कर कृष्ण से मिलने के लिए जो आई है, मैं इसका ऋण नहीं दे चुका सकता। ये कठिन बेड़ियां क्या थी? लज्जा, धैर्य, विवाह इत्यादि, मर्यादा, वेद मर्यादा, लोक लज्जा, सब कुछ। मीराबाई ने अंत में क्या किया? जब पति उन पर संदेह करने लगे, घर में बैठ करके कीर्तन करती है, ये किसके साथ में बातचीत करती है? एक दिन सब लोगों ने उनसे कहा, महाराणा ये आपकी बड़ी बेइज्जती होती है, न जाने किस किन के पुरुषों के साथ में लेकर के और घर में बिना बजाती है, और मेरे तो गुरुधर गोपाल दोनों कही कर, जरा देखिए इसमें दाल में कुछ काला है। बस राणा तलवार लेकर के अपने सैनिकों के साथ में वहां पर आ गया, और इन्होंने बिना वादन किया और एकदम थिरक करके नृत्य करने लगी, भावावेश हो गई, शरीर की सुबू दी नहीं रही। तो ये अच्छा मौका हुआ सुन करके, आज जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं खोलेगी हम दरवाजा तोड़ देंगे, देखे कि किसके साथ में नृत्य कर रही है। दरवाजा तोड़ दिया, उनको होश नहीं, खोला नहीं, दरवाजा तोड़ करके भीतर गए। वो तो एकदम तन्मय होकर के बीणा ली हुई है, तो जब वो कहां गया दिखाओ, तो खाट के नीचे, इधर पलंग के नीचे, कोने में।